श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 रास नृत्य। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने भगवान को अत्यंत मनोहारी इन शब्दों में कहते सुना तो वे उनके विछोह से उत्पन्न अपना दुख भूल गई। उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वही यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में रास नृत्य लीला प्रारंभ की, जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखला बद्ध कर दिया। तब उल्लासपूर्ण रास नृत्य प्रारंभ हुआ, जिसमें गोपियां एक गोलाकार घेरे में सज गई। भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़े के बीच बीच प्रविष्ट हो गए। ज्यों ही योगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों ओर रखा तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वे केवल उसके ही पास खड़े हैं। इस रास नृत्य को देखने के लिए देवता तथा उनकी पत्नियां उत्सुकता से गदगद हुए जा रहे थे। शीघ्र ही आकाश में उनके सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। तब आकाश में धुंधुबियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। मुख्य गंधर्वों ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण के निर्मल यश का गायन किया। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों पायलों तथा करदनी के घुंघरुओं से तुमुल ध्वनि उठती थी। नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है, जब गोपियों ने कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाया तो उनके पांव ने नृत्य किया, उनके हाथों ने इशारे किए और उनकी भौहें हंसी से युक्त होकर मटकने लगी, जिनकी वेड़ियां तथा कमर की पेटियां मजबूत बंधी हुई थी, जिनकी कमरें लचकती हुई थी, जिनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलकती थी, जिनके स्तनों को ढके हुए वस्त्र इधर उधर हिलते थे तथा जिनके कानों की बालियां गालों पर हिल ढुल रही थी। कृष्ण की ऐसी तरुणी प्रियाएं बादल के समूह में बिजली की कौंद की तरह चमक रही थी। विविध रंगों से रंगे कंठों वाली माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने की इच्छुक गोपियों ने जोर जोर से गाना गाया और नृत्य किया। वे कृष्ण का स्पर्श पाकर अति आनंदित थी और उन्होंने जो गीत गाए उनसे सारा ब्रह्मांड भर गया। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ शुद्ध मधुर राग गाया, जो कृष्ण के स्वर से भी उच्च सुर ऊंचे स्वर में था। इससे कृष्ण प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। तत्पश्चात एक दूसरी गोपी ने वही राग अलापा, किंतु वह द्रुपद के विशेष छंद में था। कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की। जब एक गोपी रास नृत्य से थक गई तो वह अपनी बगल में खड़े गदाधर कृष्ण की ओर मुड़ी और उसने अपनी बाह से उनके कंधे को पकड़ लिया। नाचने से उसके कंगन तथा बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे। कृष्ण ने अपनी बाह एक गोपी के कंधे पर रख दी, जिसमें से प्राकृतिक नीले कमल की सुगंध के साथ उसमें लेपित चंदन की मिली हुई सुगंध आ रही थी। जो ही गोपी ने उस सुगंध का आस्वादन किया, त्यों ही हर्ष से उसे रोमांच हो उठा और उसने उनकी बाह को चूम लिया। एक गोपी ने कृष्ण के गाल पर अपना गाल रख दिया, जो उसके कुंडलों से सुशोभित था और उसके नाचते समय चमचमा रहा था। तब कृष्ण ने बड़ी ही सावधानी से उसे अपना चबाया पान दे दिया। एक अन्य नाचती तथा गाती हुई गोपी, जिसके पांव के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे, थक गई। अतः उसने अपने पास ही खड़े भगवान अच्युत के सुखद कर कमल को अपने स्तनों के ऊपर रख लिया। लक्ष्मी जी के विशिष्ट प्रिय भगवान अच्युत को अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने अथाह आनंद लूटा। वे उनको अपनी भुजाओं में लपेटे थे और ये उनके यश का गान कर रही थी। कानों के पीछे लगे कमल के फूल, गालों को अलंकृत कर रही बालों की लटें तथा पसीने की बूंदे गोपियों के मुखों की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाजू बंदों तथा घुंघरुओं की रुनझुन से जोर की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनके जूड़े बिखरे हुए थे। इस तरह गोपियां भगवान के साथ रास नृत्य के स्थल पर नाचने लगी और उनका साथ देते हुए भौरों के झुंड गुनगुनाने लगे। इस प्रकार आदि भगवान नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने व्रज की युवतियों का आलिंगन करके, उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार के उनके साथ में आनंद लूटा। यह वैसा ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो। उनका शारीरिक संसर्ग पा लेने से गोपियों की इंद्रियां हर्ष से अभिभूत हो गई, जिसके कारण वे अपने बाल, अपने वस्त्र तथा स्तनों के आवरणों को अस्त व्यस्त होने से रोक न सकी। हे कुरु वंश के वीर, उनकी मालाएं तथा उनके गहने बिखर गए। देवताओं की पत्नियां अपने विमानों से कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर सम्मोहित हो गई और काम वासना से विचलित हो उठी। वस्तुतः चंद्रमा तक भी अपने पार्षद तारों समेत चकित हो उठा। वहां पर जितनी गोपिकाएं थी, उतने ही रूपों में विस्तार करके भगवान ने खेल खेल में उनकी संगति का आनंद लूटा, यद्यपि वे आत्मा राम हैं। यह देखकर कि गोपियां माधुर्य विहार करने से थक गई थी, हे राजन परीक्षित, दयालु श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पोंछा। अपने गालों के सौंदर्य, गुंगराले बालों के तेज एवं सुनहरे कुंडलों की चमक से मधुरित हंसी युक्त चितवनों से गोपियों ने अपने नायक को सम्मान दिया। उनके नखों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की माला गोपियों के साथ माधुर्य विहार करते समय कुचल गई थी और उनके स्तनों के कुमकुम से सिंदूरी रंग की हो गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए, जिनका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे, जो श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा हो। निसंदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी दान के खेतों को रोंद डालता है। हे राजन, जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हंसती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। जब देवतागण अपने विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद लेने लगे। तत्पश्चात भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। यह उपवन स्थल तथा जल में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। भौरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई मदमत हाथी अपनी हथनियों के साथ जा रहा हो। यद्यपि गोपियां सत्य काम कृष्ण के प्रति दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया जो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालन करता एवं संरक्षक हैं। तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहस पूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आंच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। जो महान संयमकारी नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह भी नष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति यदि वह रुद्र नहीं है नष्ट हो जाएगा। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इनके आदेशों को पूरा करें। हे प्रभु, जब मिथ्या अहंकार से रहित ये महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कर्म अनर्थ करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। तो फिर समस्त सृजित प्राणियों, पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं के स्वामी भला उस शुभ तथा अशुभ से किसी प्रकार का संबंध कैसे रख सकते हैं जिससे उनके अधीनस्थ प्राणी प्रभावित होते हों। जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूली का सेवन करते हुए पूर्णतया तुष्ट हैं, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते, न ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं। जो गोपियों तथा उनके पतियों और वस्तुतः समस्त देहधारी जीवों के भीतर साक्षी के रूप में रहता है वही दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस जगत में विविध रूप धारण करता है। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाएं। कृष्ण की माया शक्ति से मोहित सारे ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां घरों में उनके निकट ही रहती रही थी, इस तरह उनमें कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा की पूरी एक रात बीत गई तो कृष्ण ने गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी, यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाह रही थी तो भी भगवान की इन प्रेयसियों ने उनके आदेश का पालन किया। जो कोई वृंदावन की युवा गोपिकाओं के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत रास नृत्य नामक 33वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।